इस नुस्खे में हम पिछले चंद दिनों से किल्लत कलाम पे गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी गुफ्तगू करने में कमी करना, बातचीत में कमी करने को किल्लत कलाम कहते हैं। कल की मजलिस में हमने ये अर्ज किया कि किल्लत कलाम लोगों की नजर में तो बहुत ही कोई अनजस्ट किस्म की, नाजायज किस्म की ये एक मुतालबा है मशायख का कि किसी को बातचीत करने से क्यों रोका जाएगा। मगर मशायख ने इसका जवाब दिया कि ये एक वाहिद ऐसा अमल है, अगर किसी को आ गया तो उससे वो कुर्ब इलाही बहुत जल्दी हासिल कर सकता है। और इसकी दो वजूहात कल की मजलिस में बताई। पहली वजह कि जो खामोश रहने की आदत करेगा तो उसको सुनने की आदत होगी, और सुनने की आदत होगी तो अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाज भी सुन सकेगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, अल्लाह को राजी करने वाले अल्फाज कह रहा हूं, अल्लाह को नाराज करने वाले अल्फाज। तो यह खामोशी इख्तियार करने से इंसान को अपनी आवाज आना शुरू होती है, वरना टर 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 किए जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या क्या बोल बैठे हैं, किस किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुक्म को तोड़ बैठे हैं, और नऊज बिल्ला कई मरतबा रवानी में अल्लाह अकबर कुफर के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो पहली वजह मशायख ने ये बताई कि किल्लत कलाम इसलिए जरूरी है कि इंसान अपनी कहे हुए अल्फाज को सुने तो सही, ना पहले सिर्फ बोलने पे ही सारा जोर है। दूसरी वजह कल की मजलिस में हमने ये बताई कि किल्लत कलाम इसलिए जरूरी कि जो शख्स किल्लत कलाम पहले सीखेगा फिर वो अल्लाह को दिल में याद करना सीखेगा, यानी उसको कसरते जिक्र नसीब होगी, जबान चलती रहेगी, दिल की तवज्जो होना अल्लाह की तरफ महान नामुमकिन काम है। आज की इस मजलिस में तीसरी अहम वजह किल्लते कलाम की, क्योंकि जाहिरन तो ऐसे लगता है कि किस तरह की जबरदस्त किस्म की एक जिम्मेदारी सर पे डाल दी सालिक के, किसी बातचीत नहीं करनी, और वाकयतन खानकाहों में ये सिखाया जाता था और अब भी जाता है। मगर अगर गौर से देखा जाए तो ये एक वाहिद अमल है कि जिसको करने से इंसान को बातिन की इस्लाम बहुत ज्यादा नसीब, बल्कि सच्ची बात तो है कि एक ऐसा अमल है, अगर ये अमल नहीं है तो बातिन की इस्लाम ही नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं टर 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 करता जाऊंगा और अल्लाह वाला भी बन जाऊंगा, ऐसा होना नहीं है। तो किल्लत कलाम के बगैर अल्लाह का मुकर्रब नहीं बन सकता। ऐसी मिसालें जरूर हैं कि किल्लत ताम के बगैर कोई शख्स अल्लाह का मुकर्रब बन गया। चुनाचे हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे जिनको हजरत ने इजाजत दी थी। इजाजत इसलिए दी थी कि पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का मामूल था, यानी रात भर कयाम में खड़े होते थे। तो यह आम बंदा नहीं कर सकता, अल्लाह वाले ही कर सकते हैं, तो बहुत ही अल्लाह से मुकर्रब कर सकते। मगर खाने पीने का मामूल इतना ज्यादा था कि हजरत ने खानकाह पे बुलाया कि जी आप चंद दिनों के लिए यहाँ आए, खत लिखा, उस जमाने में तो खतों की दावत। तो उन्होंने जवाबी खत में लिखा कि हजरत बहुत माजरत चाहता हूँ, आना तो चाहता हूँ मगर खाने पीने का मामूल ऐसा है कि शायद आपके यहाँ आके वो मामूल पूरा नहीं हो सकेगा। हर रोज रात को पूरा बकरा बमा सीरी पाए खाता हूँ और उसी हिसाब से रोटियां खाता हूँ, और फिर ये खा के पूरी रात इबादत में लग जाते। अल्लाह अकबर। तो देखिए मिसाल है, और हजरत ने इजाजत भी दी। तो किल्लते ताम के बगैर अल्लाह वाला फिर भी बंदा बन सकता है, मगर किल्लते कलाम के बगैर नहीं बन सकता। जिसको टर टर करने की आदत है वो नहीं बन सकता। बहरहाल किताबों में लिखा है कि हजरत की खानकाह पे वो पहुंच गए। रात जब खाने का वक्त आया तो खानकाह पे तो कोई सीरी पाए और कोई बकरा नहीं तैयार था उनके लिए। दाल पकी हुई थी, हजरत ने दो रोटियां रखी एक प्लेट में और दाल डाली और उनसे कहा कि ये लीजिए और खाए। अब वो सोच रहे थे कि ये तो मेरे खाने का 1/100वां हिस्सा भी नहीं है, मेरा क्या बनेगा, कैसे गुजारा होगा, सारा मामूल डिस्टर्ब हो गया। मगर हजरत ने कुछ ऐसी दुआएं करके, तो ऐसी तवज्जो डाल के उस खाने में दी कि वो दाल उनके लिए बहुत किफायत कर गई, दो रोटी भी पूरी ना कर सके, उनका पेट बिल्कुल सहर हो गया है और तरतीब जो है वो बदल गई और खाना पीना कम हो गया। तो ताम ये वाक्या बताने का मकसद ये कि किल्लते ताम भी जरूरी अल्लाह वाला बनने के लिए, मगर किल्लते कलाम गुफ्तगू में जो नीचे नहीं आएगा उसके बगैर अल्लाह वाला बना ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं। यानी डर डर करने वाला बंदा, हर वक्त जबान को बेदरेग इस्तेमाल करने वाला, या इस चीज को नहीं पहचानने वाला कि मेरी जुबान कह क्या रही है, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। पुराने पाक में अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया कि हमने किन की सोहबत इख्तियार करनी हुई है, तो ये नहीं कहा कि जी ये अल्लाह वालों की सोहबत, मतलब कहना तो अल्लाह वालों की सोहबत था मगर उस अल्लाह वालों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सादिकीन इस्तेमाल किया, यानी जो जुबान के सच्चे हैं। तो किल्लत कलाम लोग ये समझते हैं कि मशाइन किस तरह की हमारे से ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि जी गुफ्तगू ही नहीं कर सके, सुभान अल्लाह ये क्या बात हुई। मगर आम बंदा क्या समझेगा कि जब तक ये खामोशी नसीब नहीं होगी तब तक अल्लाह वाले बन ही नहीं सकते। तो खामोशी का पहला फायदा यह है कि खामोश जुबान होगी तो कान अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनना शुरू करेंगे, खुद पता चलेगा कि मेरे निकले हुए जुबान किस अल्फाज सही है या गलत। और दूसरा फायदा इसका यह है कि खामोशी होगी तो जिक्र ज्यादा होगा, जुबान चलती रहेगी तो जिक्र भी थोड़ा होगा, हो ही नहीं सकता। और तीसरा फायदा यह है कि खामोशी सब्र की अलामत है, हम में से हर एक को सब्र आजमा सूरत हाल पैदा होती है, पैदा होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दरी दुनिया कसे बेगम नवाज, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको तकलीफें नहीं आएंगी। तो जिसको खामोशी की आदत होगी तो वो तकलीफों पे सब्र की भी आदत ऑटोमेटिकली होगी, वरना सब्र भी नहीं होगा। तो इसलिए किल्लते कलाम की ट्रेनिंग सबसे अहम तरीन चीज है। किल्लते कलाम से ही पता चलता है कि इंसान को जुबान से क्या क्या वो कह रहा है, किल्लते कलाम से ही जिक्र की कसरत नसीब होती है और किल्लते कलाम से ही इंसान को सब्र नसीब होता है। आज तो हमारी तबीयत के खिलाफ कोई चीज हो जाए तो एक जगह 10 हम सुना देते, किसी बंदे से कोई इख्तलाफ हो जाए बेगम का शोहर से हो जाए, शोहर का बेगम से हो जाए, बच्चों से हो जाए, घर में काम करने वाले मुलाजिम से हो जाए, ऑफिस में काम करने वाले कुलीग से हो जाए, बस शुरू। ये जुबान है कि रुकती ही नहीं है। अब तो जिसको किल्लते कलाम नसीब, उसकी जुबान बहुत ही मेजर करके सही चुनाव वाले सही अल्फाज कहती है। तो एक आखिरी वाक्य, अगर आज की बात मुकम्मल करते हैं, किताबों में बहुत सारे मशायख ने यह वाक्य दर्ज किया, हमारे मुल्क के एक गांव की एक खातून थी, नेक खातून थी, रिश्ता उसका बहुत बड़े जमींदार से आया और जमींदार की जमीन इतनी कि उसकी जमीन के अंदर 3 रेलवे स्टेशन भी आ जाते हैं, इतना ज्यादा आराजी, इतना रकबा, मालदार तरीन आदमी से रिश्ता आ गया। नेक औरत, नेक नौजवान खातून, अल्लाह ने उसका ये रिस्क वहां लिखा था, शादी वहां लिखी थी, शादी हो गई। शौहर अमीर बहुत था मगर दीन की तरफ ऐसी तवज्जो नहीं थी, इसकी तवज्जो दीन की तरफ खूब थी। जमीन इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन के स्टेशन भी थे, बस के स्टॉप भी जमीनों के दरमियान से गुजरते थे। तो कभी कभी अपनी गाड़ी पे ये दोनों निकलते तो देखते कि बस स्टॉप पे रात को बस आए नहीं, लोग खड़े हुए, न खाने को कुछ, न सर छुपाने को कुछ, सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाती, गर्मियों में गर्मी भी बहुत। तो नेक खुदा तरस औरत थी तो शोहर से कहा कि चलो क्यों ना हम एक कमरा सा बना दे, तो मुसाफिरों के लिए सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह हो, जिन्होंने रात पर बस आखिरी निकल गई तो पूरी रात अब खड़ा रहना है तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। मुसाफिरों की दुआ अल्लाह कबूल भी करते हैं, शोहर को बड़ी तरजीब दी, शोहर को एक कमरा बनाना क्या बड़ी बात, आराम से एक कमरा बना दिया कि चलो मेरी बीवी का शौक है। कमरा बन गया, लोगों के लिए आसानी हो गई, लोग भी बड़े खुश हुए कि जी जमींदार साहब ने कमरा बना दिया, बीवी भी खुश हो गई जी मुसाफिरों की खिदमत हो गई। चंद दिनों बाद फिर वहां से गुजर रहे थे, उस कमरे को देखा, लोग वहां पे काफी रात को ठहरते क्योंकि बसें मिस हो जाती हैं, आखिरी बस के बाद जगह ही नहीं होती। तो शोहर से कहा कि और तो कुछ नहीं, जो रात को मुसाफिर ठहर जाते हैं पूरी रात यहाँ गुजारते हैं, कुछ खाने पीने का भी हम बंदोबस्त कर ले, अल्लाह ने इतना दिया है, अगर हर रोज रात चंद लोगों को खाना पीना खिलाए तो हमारे माल में क्या कमी हो। अब शोहर के पास इतना पैसा था और बीवी की इतनी छोटी सी बात को कबूल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो मसला कोई नहीं है, हम अपने फलां बंदे को कह देते, मुलाजिम के जिम्मे लगा देते हैं कि हर रोज रात को मुसाफिरों के लिए खाना यहाँ बनेगा, जितने मुसाफिर हो उस हिसाब से खाना बना लिया, खाना बनना शुरू हो गया, मुसाफिर खाना भी है और रात को खाना खाना भी है। जमींदार साहब का एक दोस्त था, उसको भी पता चला कि जी इस तरह से मुसाफिर खाना और उसके अंदर फिर हर रोज रात को खाना होता है। पुराना दोस्त था, बचपन का यार था, इन चीजों को कुछ समझता ही नहीं था। उसने कहा बड़े तेरे फ्री के पैसे हैं, किस तरह से उड़ाया जा रहा है, क्या फायदा है इन चीजों का, और खूब उसको इस तरह से तरगीब दी कि जी ये बिल्कुल तूने बेवकूफी वाला काम किया। अब कमरा तो नहीं तोड़वा सकता था, इतनी तरगीब सुन सुन के आखिर को उसने अपने मुलाजिम से कहा ये खाना पीना बंद करो यार, बेकार में पैसे जाया होते। बीवी के कहने पे जो काम शुरू किया था, बीवी से मशवरा किए बगैर उसको खत्म कर दिया। बीवी का दिल बड़ा दुखा, अब आम सी कोई बीवी होती तो लड़ाई झगड़ा भी करती, जैसे कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता तक में जो चीज मैंने कही है वो क्यों नहीं कर रहे, ये काम सी चीज है। मगर नेक औरत थी और जुबान का ठीक इस्तेमाल जानती थी, किताबों में लिखा है कि किल्लते कलाम की सिफत रखती थी, तो इस मामले पे शौहर को कुछ भी नहीं कहा। यह हैरानकुन बात, खामोश। कई दिनों बाद दोनों फिर जमीन पे आए और जमीन पे चक्कर लगा रहे थे। ये भी जमीन को देखना चाह रहा था, जमीनों में कुएं होते हैं। तो जाने का वक्त आया, ये जाके गाड़ी में बैठ गया और ये कुएं के पास खड़ी हुई थी। तो शौहर ने कहा कि बस अब चलते हैं। इसने कहा अच्छा ठहर जाए 1 मिनट। शौहर ने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाए, मैं गाड़ी पे। शौहर गाड़ी में जाके बैठा और ये कुएं पे खड़ी है, देखी जा रही, देखी जा रही। शौहर इतनी देर से इंतजार कर रहा था, आखिर को गाड़ी से निकल के कुएं पे आ गया कि पता नहीं क्यों इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई है, मैं जाके लेके आता हूँ, कोई मसला है कुएं में। तो आके उसने पूछा कुएं में कोई मसला है, कोई चीज हो गई है कि तू यहाँ खड़ी है इतनी देर से। उसने कहा ये देख रही हूं कि ये इतना पानी कुएं में है और यहाँ पे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं एक के बाद एक आके टोले भर भर के लेके जा रहे हैं, पानी है कि खत्म ही कोई नहीं हो रहा। उसने कहा अल्लाह की बंदी इसलिए तू इतनी देर से खड़ी है, तो आराम से इसका जवाब है, पानी कभी नहीं खत्म होता है, पानी ऊपर से लेके तो लोग चले जाते हैं, नीचे से और पानी अल्लाह भेज देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो अच्छा पानी ऊपर से लोग ले लेके चले जाते हैं, नीचे से अल्लाह और भेज देते हैं। कहता है हाँ और कैसे तो होता है। उसने कहा फिर हमने भी तो एक नेकी का कुआं खोला हुआ था, आप क्यों डर गए कि जब लोग लेके चले जाएंगे तो अल्लाह पीछे से नहीं भेजेंगे। ये बात कहनी थी कि उसके दिल को ये बात कि देखो मौके की मुनासिबत से ऐसी बात की कि शौहर को समझ में आ गया। तो बिल्कुल सही था, जब इंसान को किल्लते कलाम नसीब होता है तो जुबान से मौके की मुनासिबत से सही चुनाव के अल्फाज निकलते हैं जिससे लोगों के दिल पे असर भी होता है। इसलिए आम बंदा तो ये समझता है कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक पाबंदी लगा दी गई है, यदि किल्लते कलाम करना है, ये पाबंदी ऐसी है कि इसके बगैर कोई बंदा भी अल्लाह का मुकर्रब नहीं बन सकता। अल्लाह ताला हमें ये सिफत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें, दुआ से पहले आज की ताखीर के लिए माजरत कि आज रात का देर से शुरू हुआ, इंशाल्लाह कल से अपने वक्त में होगा। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا
آمين.
متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.